بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب برمودا تکون اور دجال ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے۔ اس کے مصنف مولانا عاصم عمر ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 03212138225۔ اللہ نے اپنے کمزور بندوں پر رحم فرمایا۔ سڑک پر نصب بم خاموش رہا۔ اسباب و ٹیکنالوجی اپنا اطمینان کر کے واپس چلی گئیں، لیکن مجاہدین کے لیے ابھی بھی صبر کی ایک اور منزل باقی تھی۔ اب امریکی قافلے کو یہاں سے گزرنا تھا۔ قافلہ آیا، ایک گاڑی گزری، دوسری، تیسری۔ جس مجاہد کے ہاتھ میں وائرلیس تھا، اس نے دو بار بٹن دبائے، پھر اپنی شہادت کی انگلی مطلوبہ بٹن پر رکھ لی اور جتنی دعائیں یاد تھیں ساری پڑھ ڈالیں۔ جیسے ہی مطلوبہ گاڑی مائن کے اوپر آئی، انگلی دبی اور سپر پاور کی ٹیکنالوجی کے پرخچے ہوا میں اڑ گئے۔ ادھر سب کی زبان سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ تجربہ کامیاب تھا، توکل ٹیکنالوجی پر کامیاب غالب آ چکا تھا۔ ان انجینئر ساتھیوں نے دن رات یہ ریموٹ بنا کر سارے افغانستان میں مجاہدین و طالبان کو پہنچائے اور 2 سال تک کامیاب کارروائیاں کرتے رہے۔ تیسرا دور، 2008 میں امریکیوں نے اس ریموٹ کو جیم کرنے والے آلات سے ناکارہ بنا دیا۔ لیکن حوصلہ بلند ہو اور منزل پہ نظر ہو تو جنگوں میں یہ اتار چڑھاؤ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مجاہد انجینئروں نے اپنا کام شروع کر دیا، لیکن مجاہدین کے پاس فوری اس کا توڑ نہیں تھا، جبکہ یہ امریکیوں کے شکار کرنے کا سیزن تھا۔ موسم بہار کے ساتھ ہی طالبان و مجاہدین امریکی درندوں کا شکار کرنے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ کارروائیاں روک دینے کا مطلب تھا کہ اگلے سیزن تک انتظار۔ تو اس بار ترقی کے بجائے پیچھے کی طرف گئی اور ریموٹ کا استعمال ہی چھوڑ دیا۔ گاڑیوں کو اڑانے کی کارروائیاں بغیر ریموٹ کے، تفصیل کے یہاں موقع نہیں۔ پہلی کارروائی میں الحمدللہ 10 وحشی امریکیوں کی ٹکا بوٹی کر دی گئی۔ اس طرح امریکیوں کے جیمرز ناکارہ ہو گئے۔ جب تک نئے ریموٹ نہ تیار ہوئے، اس وقت تک اس طریقے سے حوروں کے دیوانے کارروائیاں سر انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصے میں ہی اللہ کی مدد سے انجینئر نے نئے ریموٹ تیار کر لیے اور تجربات کر کے میدانوں تک پہنچا دیے۔ یہاں بھی امریکیوں کو شکست اٹھانی پڑی۔ عراق میں مائن کارروائیوں سے بچنے کے لیے امریکہ نے مائن پھٹانے والی مائن بلاسٹر خصوصی گاڑیاں بھجوائی تھیں۔ ان گاڑیوں میں انتہائی جدید سینسر، اسکینر اور ڈکٹیٹر نصب تھے، جو زیر زمین کسی بھی مائن وغیرہ کا پتہ لگا لیتے تھے۔ یہ نظام گاڑی کے آگے لگے بلیڈ بلڈوزر کی طرح میں نصب تھا، جو گاڑی کے ٹائر مائن پر پہنچنے سے پہلے ہی مائن کا پتہ لگا لیتا تھا۔ پھر اس کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت بھی انہی گاڑیوں میں تھی۔ شروع میں امریکیوں کو کامیابی ملی، لیکن جب مجاہدین کو ان گاڑیوں کا علم ہوا تو ان کے انجینئروں نے محنت کر کے اس کا توڑ پیدا کر لیا۔ انہوں نے مائن کے ساتھ ایک چھوٹے سے سرکٹ کا اضافہ کر کے ان کے سینسر اور اسکینر کو اندھا کر دیا۔ ان گاڑیوں کا کام اگرچہ مجاہدین کی بچھائی مائنوں کو تلاش کر کے ناکارہ بنانا تھا، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ان گاڑیوں کی تلاش کا کام شروع کر دیا اور چن چن کر ان گاڑیوں کو تباہ کیا۔ یہ کل 35 گاڑیاں تھیں جن کا کباڑ اٹھا کر عراقی بچوں نے کباڑیوں کو بیچ دیا۔ ایک گاڑی کی قیمت 700,000 ڈالر، 56 کروڑ روپے تھی۔ فدائی کارروائیاں مائن کارروائیوں کے علاوہ فدائی کارروائیاں ہیں جن کا کوئی توڑ ہی دجال کے پاس نہیں ہے۔ معدے سے سوچنے والے اور پیٹ کی نظر سے مجاہدین کا دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب بے روزگار اور غربت کے مارے لوگ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں کو بھی ایرانیوں نے یہی کہا تھا۔ کیا تمہیں قحط اور فاقوں نے مکہ سے باہر نکالا ہے؟ کسی نے بھوکے سے پوچھا۔ 2 اور 2 کتنے؟ بولا 5 روٹی۔ تو ان پیٹ کے بھوکوں کو کہنے دیجئے جو بھی کہیں کہ یہ ہر چیز کو پیٹ کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ उनकी जबानें चलती रहीं, यहाँ तक कि शरीयत उनके बारे में कोई फैसला कर दे। फिदाई कार्रवाइयों के अलावा दुश्मन पर कमीन लगाना, उनके कैंपों पर चढ़ाई करना और मिसाइल हमले वगैरह भी जारी हैं। अल्लाह ताला ने 2007 के बाद मैदान जंग में बहुत कामयाबियों से नवाजा है। 2008 में कंधार जेल तोड़कर तालिबान को आज़ाद कराने की कार्रवाई अस्करी तारीख की अनोखी और दिलचस्प मिसाल है। इस कार्रवाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंधार जैसे शहर में दज्जाल के इत्तेहादियों का कितना कंट्रोल है। अमरीकी अपने कैंपों तक महदूद हैं, अगर कैंप से बाहर निकलते हैं तो किसी भी जानिब से फायरिंग शुरू हो जाती है। कंधार शहर में दज्जाली इत्तेहादी फौज के बजाय तालिबान गश्त करते हैं। काबुल में सरीना होटल पर हमला और डिक चेनी की मौजूदगी में बगराम एयरबेस पर हमला, भारतीय सफारतखाने पर कामयाब कार्रवाई जिसमें भारतीय आला अफसरान मारे गए और भारत को बड़ी तकलीफ हुई। इस तरह की कार्रवाइयां तालिबान की नई हिकमत अमली का पता देती हैं। कंधार जेल कार्रवाई, जिंदा फिदाई। कंधार जेल की कार्रवाई और कामयाबी से तमाम तालिबान कैदियों को निकाल कर ले जाना खुली अल्लाह की मदद थी। अहले ईमान के ईमान को ताजा करने के लिए ये रुदाद एक मुजाहिद की जबानी जो इसमें राकिब को सुनाई नकल कर रहे हैं। ये मुजाहिद काफी अरसे से इसी जेल में थे। उनकी रिहाई के लिए साथियों ने हर मुमकिन कोशिश की। 5 लाख रुपए में कंधार के एक आला अफसर से बात भी हुई, लेकिन ऐन वक्त पर अमरीकी आ धमके। अल्लाह ताला उनको मुफ्त में ही आजाद कराना चाहते थे। मुझे और मेरे 4-5 साथियों को तालिबान क्यादत की जानिब से कई दिन पहले इत्तला दे दी गई थी कि हम लोग तैयार रहें और अंदर मौजूद पहरेदारों से निपटें। बाहर से मेरे पास पिस्टल पहुंचा दिया गया। जेल के करीब एक और इलाका था जहां इत्तहादी फौज मौजूद थी और बराह रास्त जेल पर हमले की सूरत में वो फौज पीछे से आकर हमले को नाकाम बना देती। कंधार शहर में बड़ी तादाद में अमरीकी और नेटो फौजें मौजूद हैं। इसी तरह इस तरफ से भी तालिबान को खतरा था। चुनाचा तालिबान ने मुख्तलिफ ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने जेल के करीब वाले इलाके पर हमला कर दिया। दूसरा ग्रुप कंधार शहर से जेल की सिमट आने वाले रास्तों पर घात लगाकर बैठ गया, लेकिन ये काफी नहीं था। चुनाचा तालिबान ने अपने मुखबिरों के जरिए उस दिन कंधार गवर्नर तक ये इत्तला पहुंचा दी कि आज रात तालिबान बहुत बड़ा हमला करके गवर्नर हाउस पर कब्जा करने वाले हैं। आप जानते हैं गोरीला जंग नफ्सियाती जंग होती है और नफ्सियाती एतबार से अफगानिस्तान में अमरीका समेत नेटो और इत्तेहादी फौज की सूरत हाल बहुत खराब है। चुनाचा कंधार वालों को अपनी फिक्र पड़ गई। तालिबान ने जेल पर हमला करने वाले ग्रुप को पहले ही मुतय्यन एक जगह पर पहुंचा दिया था। शाम गुजरी, हर रोज की तरह अंधेरे उतरने शुरू हो गए। दिल में बार बार ख्याल आता शायद ये जेल की आखिरी रात हो। मंसूबे के मुताबिक पहले दूसरे ग्रुप को करीब वाले इलाके पर हमला करना था। अंदर हम 5 साथियों ने अपनी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी कि किस तरह अंदर के पहरेदारों से निमटना है और किस तरह कैदी साथियों को निकालना है। हम इंतजार में बैठे हुए थे कि फायरिंग की आवाजें आना शुरू हो गईं। इसका मतलब था कि अब थोड़ी देर के बाद तालिबान को जेल के बाहर पहुंच जाना चाहिए था। जेल पर हमले के मंसूबे में पहले ये था कि जेल के करीब वाले इलाके पर तालिबान का दूसरा ग्रुप हमला करेगा ताकि उनको इसी जगह रोका जा सके। उसके बाद इस तरफ जेल वाला ग्रुप मरकजी दरवाजे वाले पहरेदारों पर फायरिंग शुरू करेगा ताकि फिदाई बारूद से भरे भरे ट्रक को जेल के मरकजी दरवाजे तक ले जाकर फटा सके। उसके बाद तालिबान जेल पर हल्ला बोलते, जेल के बाहर से फायरिंग की आवाजें आनी शुरू हो गईं। पहरेदारों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अब इस फायरिंग को 5 मिनट हो गए थे जिसका मतलब था कि मामला गड़बड़ है। या तो फिदाई साथी पहले ही शहीद हो गया था या गिरफ्तार। जेल में मौजूद तमाम पहरेदारों ने मरकजी दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। उन्हें इत्तला हो गई थी कि एक ट्रक दरवाजे पर खड़ा है। 2 मिनट बाद ही जमीन हिल गई और एक बड़े शोले ने पूरी जेल को मुनव्वर कर दिया। उसके साथ ही तालिबान की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई, जिनमें भारी मशीन गने और दीवारों में सुराख कर देने वाले मिसाइल मुस्तकिल दागे जा रहे थे। अंदर मौजूद अक्सर पहरेदार मरकजी दरवाजे की जानिब पहले ही भाग गए थे। अंदर सिर्फ 3-4 पहरेदार बाकी थे। पेट की जहन्नुम भरने की खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी करने वाले लड़ने का हौसला कम ही रखते हैं। मैंने अपने पिस्टल से अपने कमर पर लगा ताला तोड़ा। इतने में बाकी साथी भी बैरकों से बाहर थे। जिस पहरेदार के पास चाबियां थीं, उसने हमारे हाथों में पिस्तौल देखकर फौरन तमाम बैरकों की चाबियां हमें दे दी। एक पहरेदार ने कुछ गड़बड़ की, उसको वहीं शूट कर दिया। अब बड़ा मसला यह था कि कैदियों की इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करना आसान न था। चुनाचा ताला खोलने से हर बैरक में बंद साथियों को हमने इत्मीनान दिलाया कि बाहर तालिबान मौजूद हैं और सबको आजाद करा के साथ ले जाएंगे। फिर हम पांचों साथी जल्दी जल्दी तमाम बैरकों के तारे खोलने लगे। वक्त कम था और काम ज्यादा। इतने में बाहर मौजूद तालिबान मरकजी दरवाजे वाली जानिब से, जो अब जमीन बोस हो चुका था, अंदर आना शुरू हो गए। उसके अलावा कई इतराफ की दीवारों को भी मिसाइलों से तोड़ दिया गया था। बाहर इत्तेहादियों का एक ट्रक तालिबान के हाथ लग गया था। कुछ साथियों को उसमें बिठा दिया गया, लेकिन अभी बड़ी तादाद पैदल चलती थी। रात धीरे धीरे ढलती जाती थी। दूसरी जानिब यह खतरा भी मौजूद था कि अमरीकी तैयारे ना पहुंच जाएं। सुनाचा सबसे पहला काम करीबी इलाके में पहुंचना था, जहां जाकर छुपा जा सके। हल्ला हल्ला करके वहां पहुंच गए। सुबह नमूदार होने वाली थी। तैयारे फजाओं में चिंगाड़ रहे थे। चुनाचा यहाँ से आगे सफर जारी नहीं रखा जा सकता था। फिदाई जिंदा है। अगली रात तालिबान यहाँ से निकलने के लिए गाड़ियां ले आए। हम गाड़ियों में सवार होकर महफूज मकाम की जानिब महवे सफर हुए। एक साथी मेरे साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? उसके बजाय दूसरे साथी ने जवाब दिया, ये ट्रक वाला फिदाई है। जवाब सुनकर मैं उछला। मैंने सर से पैर तक उसे दोबारा देखा। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, फिदाई? यकीन करने वाली बात ही नहीं थी। बारूद से भरा ट्रक फटाने वाला, जिसके धमाके से पूरा इलाका लरज उठा था। आखिर इसमें बैठा फिदाई किस तरह जिंदा हो सकता था? फिदाई खुद बताने लगा। उसने बताया कि जब वो ट्रक मरकजी दरवाजे पर ले जाने में कामयाब हो गया और कलमा पढ़कर धमाका करने के लिए बटन दबाया, लेकिन धमाका नहीं हो सका। दो तीन मरतबा उसने बटन दबाया, लेकिन जिस जाम की तमन्ना में मैं गया था, वो लबों तक नहीं आ सका। वो ट्रक से कूदा और पीछे तालिबान की तरफ भागकर उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने फौरन इस ट्रक पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ट्रक में भरा बारूद फट गया। इस फिदाई की बात सुनकर अब वो बात मेरी समझ में आ गई थी कि ट्रक देर से क्यों फटा। उसके देर से फटने से दो फायदे हुए, एक तो फिदाई बच गया और दूसरा जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद तमाम पहरेदार मरकजी दरवाजे पर जमा हो गए और ट्रक के धमाके में मर गए। ये कंधार जेल की रुदाद है। जिहाद के रास्ते में इस तरह अल्लाह की मदद कदम कदम पर देखने को मिलती है। अमरीका जैसी वसाइल से लैस कुव्वत का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन हुआ। इस बात को जिहाद में लड़ने वाला हर मुजाहिद अच्छी तरह समझता है। जाहिर बीन अभी भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, और जिस तरह मगरबी मीडिया उनकी सोचों का रुख मोड़ देगा, वो उसी का विर्द शुरू कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि किस तेजी के साथ ये अल्लाह की मदद को किसी काफिर मुल्क की मदद करार देकर जिहाद के समरात और नतायज पर अपनी अफवाहों का गुबार डालना चाहेंगे। खुरासान से काले झंडे। तर्जुमा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरफ से एक कौम आएगी और अपने हाथ से मशरिक की जानिब इशारा फरमाया, काले झंडों वाले होंगे। वो हक मांगेंगे तो वो मौजूदा हुक्मरान नहीं देंगे, दो मरतबा या तीन मरतबा, चुनाचा वो जंग करेंगे तो वो कामरान होंगे। बस वो उनको हक देंगे, लेकिन उसको वो कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उस हक मुराद अमारत को मेरे अहले बैत में से एक शख्स को दे देंगे, तो वो इस जमीन को अदलो इंसाफ से ऐसा भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी हुई थी। तो तुम में से जो भी उनको पाए, उनके पास जरूर जाए, वह बर्फ पर घसीट कर ही जान आना पड़े। अबू उमर वल्दानी। मुहक्किक अबू अब्दुल्ला शाफई ने इस हदीस को सही कहा है। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को मुस्तकबिल में पेश आने वाली मुसीबतों का जिक्र किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मशरिक से काले झंडे भेज दे, जिसने इन काले झंडों वालों की मदद की, अल्लाह उसकी मदद करेगा, और जिसने उनको छोड़ दिया, यानी उनकी मदद ना की, अल्लाह उसको छोड़ देगा। फिर वो काले झंडे वाले उस शख्स के पास आएंगे जो मेरा अहम नाम होगा, और अपनी अमारत उस मेरे हमनाप को सौंप देंगे। चुनाचा अल्लाह ताला उनकी मदद व नुसरत फरमाएंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद। ये हदीसे मुरसिल है। तर्जुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरक की जानिब से काले झंडे आएंगे और हालत ये होगी कि घोड़े सीने तक खून में डूबे होंगे। मजमा अज़्ज़वाइद। इस रिवायत में यजीद इब्ने अबी ज़ियार ज़ियादर अवीलीन हैं और बाकी रावी सिका हैं। खालिद बिन मादान फरमाते हैं कि जब तुम रमजान के महीने में मशरक की जानिब से आसमान में आग का सुतून देखो तो जितना खाना तुम इकट्ठा कर सको कर लेना, क्योंकि ये साल भूख का साल होगा। अल-फतन नईम बिन हम्माद। फायदा, आग के सुतून से क्या मुराद है? ये और कई दीगर रिवायात में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो आखिरी जंगों में खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की जानिब इशारा करते हैं। उमर बिन मरा अल जुमली, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, फरमाते हैं, खुरासान से काले झंडे जरूर निकलेंगे, यहाँ तक कि उनके घोड़े इस जैतून के दरख्त के साथ बांध दिए जाएंगे जो लहिया और हरस्ता के दरमियान है। रावी कहते हैं, हमने कहा, इन दो दो जगहों के दरमियान तो एक भी जैतून का दरख्त नहीं है। उन्होंने फरमाया, इन दोनों जगहों के दरमियान जैतून लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि वो काले झंडे वालों या काले झंडे वाले यहाँ आएंगे और अपने घोड़ों को उनके साथ बांध देंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद। इसमें वलीद बिन मुस्लिम है और उन्होंने अन से रिवायत की है, चुनाचा ये रिवायत ज़ईफ है। मोहम्मद बिन हनीफा ने फरमाया, बनू अब्बास के झंडे निकलेंगे, फिर खुरासान से दूसरे काले झंडे निकलेंगे, उनकी टोपियां या पगड़ियां काली होंगी और उनके कपड़े सफेद होंगे। उनके हरावल दस्ते पर एक शख्स कमांडर होंगे जिनको शुएब बिन साले बिन शुएब कहा जाता होगा, जो कि कबीला बनू तमीम से होंगे। ये काले झंडों वाले सुफियानी के लोगों को शिकस्त देंगे, यहाँ तक कि बैतुल मुकद्दस आएंगे और अपनी अमारत मेहंदी को सौंप देंगे। और इनको शाम से 300 की कुमक आएगी। इनके निकलने और इमारत मेहंदी को सौंपने के दरमियान 72 महीनों का अरसा होगा। अल-फतन इस रिवायत में अल-वलीद बिन मुस्लिम है और अन से रिवायत की है। नीज इसमें अब्दुल करीम बिन अबी मुखारिक हैं, जो कि ज़ईफ हैं। नोट, खुरासान से निकलने वाले काले झंडों के बारे में तफसीलन तीसरी जंग अजीम और दज्जाल में देख सकते हैं। सुफियानी की ननियाल बनू कलब कहाँ है? हजरत अरतात ने फरमाया, सुफियानी सानी के जमाने में अलहुदा किसी भारी चीज के गिरने की आवाज होगी। ये आवाज ऐसी होगी कि हर कौम यही समझेगी कि उनके करीब वाले तबाह हुए हैं। मुहक्किक अहमद बिन शाबान के नजदीक इस सनद की लाबास बा दर्जे की है। हजरत अरतात ने फरमाया, सुफियानी कूफा में दाखिल होगा, 3 दिन तक वहां दुश्मनों को कैदी बनाए रखेगा और 60,000 अहले कूफा को कत्ल करेगा, फिर यहाँ 18 रात क्याम करेगा, उनके अम्वाल को तकसीम करेगा। उसका कूफा में दाखिल होना तुर्कों और अहले मगरिब से करकीसा के मकाम पर जंग करने के बाद होगा। इसमें एक जमात खुरासान लौट जाएगी, सुफियानी का लश्कर आएगा, किलों को गिराता हुआ कूफा में दाखिल हो जाएगा और खुरासान वालों को तलब कर लेगा। खुरासान में एक कौम का जहूर होगा जो मेहंदी की दावत देगी, फिर सुफियानी मदीना की जानिब लश्कर रवाना करेगा। आले मोहम्मद को कैदी बनाया जाएगा, यहाँ तक के उनको कूफा पहुंचा दिया जाएगा। फिर मेहंदी और मंसूर कूफा से फरार होकर निकल जाएंगे। सुफियानी इन दोनों की तलाश में लश्कर रवाना करेगा। तो जब मेहंदी और मंसूर मक्का पहुंच जाएंगे तो सुफियानी का लश्कर मकाम बेदा में उतरेगा और इनको धंसा दिया जाएगा। फिर मेहंदी निकलेंगे, यहाँ तक के मदीना से गुजरेंगे, जो वहां बनी हाशिम होंगे उनको निजात दिलाएंगे और काले झंडे आएंगे और पानी पर उतरेंगे। कूफा में मौजूद सुफियानी के लोगों को जब इन काले झंडे वालों के आने की खबर मिलेगी तो वो भाग जाएंगे। फिर वो मेहंदी कूफा में आएंगे और वहां मौजूद बनी हाशिम को निजात दिलाएंगे और कूफा के मौजजीन निकलेंगे, जिनको अल असब कहा जाता होगा। इनके पास बहुत थोड़ा सा असलहा होगा और इनमें से अहले बसरा में एक शख्स होगा। बस ये कूफा वाले सुफियानी को पानी सुफियानी सुफियानी को पालेंगे और कूफा के जो कैदी इनके पास थे उनको छुड़ा लेंगे और काले झंडे मेहंदी की बैत के लिए जाएंगे। अलफतन मुहक्किक अहमद बिन शाबान इसकी सनद कोला बास बा कहते हैं। बनू कलब कौन है? इमाम मेहंदी के खिलाफ सुफियानी के साथ उसके ननियाली बनू कलब के लोग ज्यादा होंगे। बनू कलब कबीला कजाआ की शाख है। दौरे जाहिलियत में बनू कलब धूम उलजंदल तबूक और वादी उल कुरा और इतराफ शाम में आकर आबाद हुए थे। बनू कलब मौजूदा दौर में कबीला अशरारात के नाम से मशहूर हैं। जिन महققین ने कबीला अशरारात को बनू कलब कहा है इनमें शेख अहमद अलजासिर, शेख मोहम्मद अलबसाम अत-तमीमी और महमूद शाकिर शामिल हैं। महमूद शाकिर ने अशरारात का मौजूदा मस्कन सऊदी अरब में उर्दून की सरहद के नजदीक वादी सरहान को बताया है। अल्लामा शकीब अरसलान की भी यही तहकीक है कि बनू कलब को आजकल अशरारात कहा जाता है। उनके अलावा रोक बिन जायद अल अजीजी और अस्ताज अब्दुल्ला बिन कासिम अन नवाक काबिले जिक्र हैं। यह इलाका सऊदी अरब में तबूक से ऊपर उर्दून की जानिब है। अमेरिका के कहने पर सऊदी हुकूमत इस तमाम इलाके को उर्दून को देने पर राजी है। अलामाते मेहंदी तर्जुमा हजरत अली रजी अल्लाह से मनकूल है कि आखिरी जमाने में फितने बरपा होंगे और लोग उनमें इस तरह छट जाएंगे जैसे सोना कान में छांटा जाता है। बस तुम अहले शाम को बुरा मत कहो, अलबत्ता जो लोग उनमें बुरे हैं उनको बुरा कहो। इनमें औलिया अल्लाह भी हैं। अनकरीब उन पर आसमान से सैलाब आएगा जो उनकी जमीयत को गर्क कर देगा। वो इतने कमजोर हो जाएंगे कि अगर उन पर लोमड़ियां भी हमला करें तो वो भी उन पर गालिब आ जाएंगी। ऐसे वक्त में मेरे अहले बैत से एक शख्स 3 झंडों के साथ आएगा। उनके लश्कर की तादाद का अंदाजा ज्यादा से ज्यादा 15,000 और कम से कम 12,000 लगाया जाएगा। उनका अलामती लफ्ज इम्थ इम्थ होगा। वो 7 झंडों पर मुश्तमिल फौज से मुकाबला करेंगे जिनमें हर झंडे के तहत लड़ने वाला हुकूमत का तलबगार होगा। अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर देगा और मुसलमानों के बाद तफरका को मिटाकर उनके अंदर उल्फत भर देगा और उनको खुशहाली से सरफराज करेगा। हाकिम ने इसकी सनद को सही करार दिया है और हाफिज जहबी ने भी इससे इत्तफाक किया है। अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेहंदी उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक सूरज के साथ एक निशानी तुलू ना हो। मुसन्निफ अब्दुल राजिक जामिया मुअम्मर इब्न राशिद अल-फतन नईम बिन हम्माद मुहक्किक अहमद बिन शाबान ने इस सनद को लाबास बा करार दिया है। इब्न सीरीन फरमाते हैं कि मेहंदी का खुरूज उस वक्त होगा जब हर 9 में से 7 कत्ल हो जाए। अल-फतन नईम बिन हम्माद मुहक्किक अहमद बिन शाबान ने इस सनद को लाबास बा करार दिया है। हुकुम बिन नाफे ने जराह से उन्होंने अरतात से रिवायत की है। अरतात ने फरमाया, लोग जब मिना और अरफात में होंगे और कबाइल गुरोह दर गुरोह हो जाएंगे तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, सुनो तुम्हारा मेरा फला शख्स है। उसके बाद दूसरी आवाज आएगी, सुनो इस ऐलान करने वाले ने झूठ कहा है। उसके बाद एक और आवाज होगी, खबरदार उसने सच कहा है। फिर वो दोनों फरीक सख्त लड़ाई करेंगे। चुनाचा वो घोड़ों की जीनों को असलहे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और यही जीनों वाला लश्कर है। इस वक्त तुम आसमान में कफा मुअल्लमा देखोगे। सख्त जंग होगी, यहाँ तक कि अहले हक के लश्कर में सिर्फ असहाबे बदर की तादाद के बराबर बाकी रह जाएंगे। तो वो चले जाएंगे यहाँ तक कि अपने साहब के हाथ पर बैत कर लेंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद मुहक्किक अहमद बिन शाबान कहते हैं कि उसकी सनद भी लाबासबा है। हजरत अली करमुल्ला वजह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहंदी में अल्लाह ताला एक रात में कयादत की सलाहियत पैदा फरमा देंगे। करीबी लफ्ज के साथ अल्लामा अल्बानी ने इसको सही कहा है। देखिए सही अलजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरकिल की औलाद में से 5वें के दौर में घमसान की जंगें होंगी। रोम पर हरकिल की हुकूमत रही, उसके बाद उसका बेटा कुस्ता इब्न हरकल, उसके बाद उसका बेटा कुस्तुन्तुन्तीन इब्ने कस्ता, फिर उसका बेटा अस्तफतान बिन कुस्तुंतीन हाकिम होगा। फिर रोम की बादशाहत हरकल की औलाद से निकलकर आले लियोन के पास चली जाएगी और दोबारा हरकल की औलाद में से पांचवी के पास दोबारा वापस आएगी, जिसके दौर में मलाहिम होंगी अल्फतन नईम बिन हम्माद। इसकी सनद मुरसिल है। फायदा, रोम पर हरकुलिस की हुकूमत 641, 610 तक 641 ईस्वी तक रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात बसरा नामी जगह में आएगी, चुनाचा वहां उनकी तादाद और बागात बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर बनू कंतूरा आएंगे, पस मुसलमान तीन गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे। एक गिरोह ऊँटों की दुम पकड़े सहरा में चला जाएगा और हलाक हो जाएगा, जबकि दूसरा गिरोह अपनी जान को बचाकर बैठ जाएगा, पस काफिर हो जाएगा। ये और पहला फिरका बराबर है। अलबत्ता तीसरा फिरका अपने घर वालों को अपनी पीठों पर लादे होगा, चुनाचा उनके मकतूल जन्नत में जाएंगे, उनके बाकी अफराद को अल्लाह ताला फतह से हमकिनार फरमाएंगे। मसनद अहमद। फायदा, मौजूदा इराक जंग में भी बसरा का महाज काफी गर्म रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मलाहिम शुरू हो जाएंगी तो दमिश्क से मवाली आजाद करदा गुलामों का एक लश्कर निकलेगा, वो तमाम अरबों में बेहतरीन घुड़सवार और उम्दा असलहा रखने वाले होंगे। अल्लाह ताला इस दीन को उनके जरिए मजबूत फरमाएंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने इसको असिलसिला सहिया हदीस नंबर 2777 में हसन कहा है। तर्जुमा, हजरत अबू सालबा रजील तालान जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उन्होंने फरमाया, जब तुम देखो कि शाम अहले बैत के एक शख्स का मेजबान या दस्तरखान बना है, तो उस वक्त कुस्तुंतुनिया फतह होगा। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इब्ने वहब ने दस्तरखान कहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरकल की औलाद में से पांचवें के दौर में मलाहिम होंगी, जिसका नाम तबर यानी तबारा होगा। अल-फतन नईम बिन हम्माद। इसकी सनद मुरसिल है। हसान बिन अतिया कहते हैं कि मुलहिमा अस्तुगरा में रूमी उर्दुन के हमवार जमीन और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लेंगे। अल-फतन नईम बिन हम्माद। मुहक्किकीन अहमद बिन शाबान कहते हैं, यह सनद लाबासबा है। इस्लाम पसंदों और इस्लाम बेजारों में कश्मकश। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम पसंदों और इस्लाम बेजारों में कश्मकश जारी है। इस्लाम बेजारों का मामला नाकाबिले फहम है। उनका हर अमल, हर कोशिश, हर नारा बल्कि तमाम जिंदगी का मकसद इस्लामी अहकामात से बगावत, शायरे इस्लामी की तोहीन और तजलील, और कुरानी अहकामात को असकार रफ्ता और पुराने दौर की रिवायत कहकर उनको सिरे से ही मिटा देना है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो भी अपने तमाम इकदाम को इस्लाम से ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास मुख्तलिफ नारे हैं, मसलन, इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, इस्लाम एक एतदाल पसंद मजहब है, एतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इन जैसी असलाहत यहूदियों की वजह करदा हैं। उनके नज़दीक हर वो क़ुव्वत जो यहूदियों के मफादात के रास्ते में रुकावट बने, वसी तर इसराइल के क़याम, तमाम यहूद कबाइल की इसराइल वापसी और दज्जाल के मंसूबों के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं, वो इंतहा पसंद हैं। और वो क़ुव्वत हर वो क़ुव्वत जो यहूद के तमाम मंसूबों में मुआविन हो जाए, उनके नज़दीक एतदाल पसंद और रोशन ख्याल है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम एक एतदाल पसंद मजहब है और ये उम्मत मोतदिल उम्मत है। लेकिन कुरान की नज़र में एतदाल की तारीफ क्या है? ये उम्मत मोतदिल उम्मत किस वक्त कहलाएगी? हमें इसका कुरान जवाब देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा, और इसी तरह हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया, यानी एक ऐसी उम्मत जो ना ज्यादती करती है और ना कमी करती है, बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात को उसी तरह मानती है जिस तरह अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए। अब जो लोग इन अहकामात में ज्यादती करेंगे वो एतदाल पसंद मॉडरेट नहीं कहला सकते। इसी तरह जो इन अहकामात में कमी करेंगे यानी कुछ अहकामात को तो मानेंगे और कुछ को छोड़ बैठेंगे वो भी एतदाल पसंद नहीं कहला सकेंगे। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल लजीना आमनु उदखुलू फिस सिल्मी काफा, तर्जुमा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी जो पूरा का पूरा दीन में दाखिल होगा वही उम्मत वस्त यानी मोतदिल उम्मत में शुमार होगा। अब ये देखना है कि मजकूरा दोनों गिरोहों में से कौन एतदाल पसंद है और कौन इंतहा पसंद। जहां तक इस्लाम पसंदों का ताल्लुक है उनकी कोशिश यही है कि ये उम्मत पूरी की पूरी इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला ने जिन चीजों को करने का हुक्म फरमाया उनको क्या किया जाए और जिन चीजों से मना फरमाया उनसे बचा जाए। दूसरी जानिब इस्लाम बेजार कुवतें हैं, अगरचे वो भी अपने इकदाम के लिए कुरान से ही सहारा लेना चाहती हैं, उनकी जानिब से इस्लाम पसंदों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो कुरान की तशरीह इंटरप्रटेशन गलत करते हैं, मसलन पर्दा जिहाद वगैरह के बारे में। लेकिन जब एतराज करने वालों से पूछा जाता है कि इस्लामी अहकाम की तशरीह कुरान और हदीस से ही समझी जा सकती है तो उनका इसरार ये होता है कि इन अहकाम की वही तशरीह की जाए जो यूरोप और अमरीका को काबिल कबूल हो। दरहकीकत उन्हें इस्लाम से कोई लगाव नहीं है, वो इस्लाम का सहारा सिर्फ इसलिए ले रही हैं कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौजूद हैं। इस्लाम से मुकम्मल बगावत करके वो यहाँ ठहर नहीं सकती, लिहाजा उनका इस्लाम का सहारा लेना मजबूरी के तहत है, ना कि इस्लाम से मोहब्बत की वजह है। चुनाचा वो एक ऐसा इस्लाम चाहती हैं जो उनकी हैवानी ख्वाहिशात के रास्ते में बिल्कुल रुकावट ना बने, जो उनके रंग में भंग न डाले, वो शराब पीना चाहें तो उन्हें कोई रोकने वाला ना हो, उनका इस्लाम उनके पाँव की जंजीर ना बने, वो शरीफ जादियों को घरों से निकालकर कोठों की जहन्नुम में झोंक डालें और उनसे कोई पूछने वाला ना हो, वो शरीफों का महल्ले में आकर गेस्ट हाउस बनाएं और फिर देखते ही देखते वो गेस्ट हाउस अहले महल्ला के लिए घोस्ट हाउस यानी भूत बंगले में तब्दील हो जाए। इस पर अहले महल्ला को बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और उनके घर की चार चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मगरिब के सांचों में ढला इस्लाम उन्हें सब कुछ करने और दूसरों को बर्दाश्त करने की इजाज़त देता है, सो वो जो चाहें करें। मस्कुरा दोनों क़ुव्वतों के माबैन ये कशमकश कोई आज शुरू नहीं हुई बल्कि ज्यादा पीछे भी ना जाएं तो ये कहा जा सकता है कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी वक्तों में इस कशमकश का आगाज हो चुका था। 20वीं सदी की इब्तदा आलम इस्लाम की दरमानदगी और लाचारगी की इंतहा थी। आलम इस्लाम के जवाल के साथ मुसलमानों में मायूसी, नाउम्मीदी, यकीन की कमी और अमलियत पसंदी का फुकदान भी उरूज पर था। ऐसे वक्त में मुसलमानों के अंदर मौजूद इस्लाम बेजार क़ुव्वतों को खेलने के बड़े मौके मयसर थे। अपने दिलों में छुपे निफाक, इस्लाम से बेजारी और इस्लाम दुश्मनी की ठंडक आग को ठंडा करने के लिए उनके पास बड़े दलाइल और बड़ी बड़ी बातें थीं। वो बड़ी आसानी से अपनी नाअहली, बुजदिली, बेगैरती और बेईमानी का सहारा, सारा का सारा मलबा इस्लाम और इस्लामी निज़ाम सल्तनत पर डाल रहे थे। यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से फारिग मुस्तशरिकीन उनको इस्लाम और इस्लामी अहकामात के खिलाफ नए नए नारे और दलाइल देते और उनको यहूद की सरपरस्ती में मुसलमानों के अंदर फैलाने की कोशिश करते। चूंकि उनके मुकाबले पर इस्लाम पसंदों का दिफा बहुत कमजोर था और फिर आलम इस्लाम की मजमूई सूरत हाल भी बड़ी मायूस कुन थी, तो इस्लाम बेजारों ने समझा कि अब आलम इस्लाम में हमारा पेश करदा इस्लाम चलेगा जिसमें रोशन ख्याली, मादर फिगर आज़ाद और सेकुलर तर्ज हुकूमत होगा। इस काम के लिए यहूद के हाथों ना नहायत कारामद बंदा हाथ लग गया जो कयामत तक आलम इस्लाम की तारीख की पेशानी पर कलंक टीक कर रहेगा। ये था अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आलम इस्लाम और खसूसन तुर्की में इस वक्त यहूदी खुफिया तहरीक फ्री मैसन के बढ़ते असर व रसूख की वजह से अतातुर्क के सामने कोई बंद ना बांध सका, तो वक्त के बलबूते पर इस्लाम बेजारों ने एक नए इस्लाम को मुतारिफ कराना चाहा जो बहुत हद तक यहूद के मस्ख शुदा दीन से मिलता जुलता था। उनके इस नए इस्लाम की बुनियाद ख्वाहिशात पर रखी गई थी। उनकी ख्वाहिशात उनके लिए हुज्जत, उनका दिल उनका मुफ्ती, और शराब के नशे में धुत उनकी जबानों से निकले अल्फाज उनके लिए नई शरीयत का दर्जा रखते थे। इन नाम नेहाद इन एतदाल पसंदों और रोशन ख्यालियों के कुव्वत बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का यह आलम था कि उनसे नमाजें बर्दाश्त ना हुई। अरबी में अजान उनके कानों को सुनना गवारा ना हो सकी। अरबी रस्मुल खत के लिए उनका दिल तंग पड़ गया। इस कशमकश को अब एक सदी हो चली है। वही नारे, वही अंदाज, वही तर्ज इस्तदलाल, सब कुछ वही है। वही फिरौनियत, अपनी बात मनवाने के लिए जुल्म तशद्दुद, तो वो तफंग जिंदान और तख्ता एदार हैं जो उनकी बात से इख्तलाफ करते हैं और कुरान और सुन्नत से उनके जवाब में दलाइल पेश करते हैं। ये इसको हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। अपनी बात मुसल्लत करने के लिए जेलों में ऐसा जुल्म या शैतान रख करे, ये आज भी यही कर रहे हैं कि कल की तरह जुल्म और तशद्दुद से अपना नया इस्लाम मुसलमानों से मनवा लेंगे। लेकिन अब जरा फर्क है, 19वीं सदी का सूरज गुरूब हुआ तो अपने साथ पर इस्लाम पसंदों की शान शौकत को भी ले डूबा। फिर जब 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ तो वो इस्लाम दुश्मनों और इस्लाम बेजारों की फतह की नवीद लेकर तुलू हुआ। इस्लाम पसंदों की सुबह उम्मीद की राह में तवील रात रात हाइल हो गई, जो तवील से तवील तर होती चली गई। अल्लामा इकबाल के दर्द भरे दिल से उठने वाली टीसें इस्लाम पसंदों की दिल की कुड़हन, दर्द और कर्ब का पता देती थी। लेकिन हर रात को जाना ही होता है और फिर सुबह को जलवा अफरोज होना ही पड़ता है। जिस तरह 20वीं सदी का सूरज इस्लाम दुश्मनों और इस्लाम बेजारों के लिए एक नई सुबह लेकर तुलू हुआ था, इसी तरह 21वीं सदी का सूरज इस्लाम पसंदों के लिए एक ऐसी सुबह लेकर नमूदार हुआ कि कम बीनाई वाला भी साफ देख सकता है कि सुबह उम्मीद तुलू हो चुकी है। 19वीं सदी जाते जाते मुसलमानों की आखिरी उम्मीद को भी अपने साथ ले गई, जबकि 20वीं सदी का सूरज जाते जाते इस्लाम बेजारों के मुंह पर जिहादे अफगानिस्तान और इस्लाम के निफाज से कालक मल गया और इस उम्मत के दिलों में सुबह उम्मीद की नई किरणें जगा गया। 21वीं सदी 20वीं सदी नहीं, वहां एक शिकस्त खोर्दा थकी हुई और नाउम्मीद कौम थी, यहाँ फातेह ताजा दम और उम्मीदों के समंदर में गौतज़न कौम है। वहां इस्लाम बेजारों, बेजमीरों और मिल्लत फरोशों ने जो चाहा किया, आलम इस्लाम को इस्लाम दुश्मनों की कालूनी बनवा दिया। आलम इस्लाम की शान और शौकत को यहाँ लौंडियों को जुल्फों में गहना कर रखा कि कोई पूछने वाला ही ना था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मौजूद इस्लाम बेजार कुव्वतें ना तो इस्लाम से कोई हमदर्दी रखती हैं और ना ही उन्हें पाकिस्तान से कोई लगाव है, बल्कि ये अपने ख्वाहिशात की जहन्नुम भरने के लिए पाकिस्तान को बेच खाते हैं। दिफाई राज, कौमी सलामती के मसाइल, कौमी गैरत और कौमी वसाइल को निस सदी से कौन लूट रहा है? कीड़े मकोड़ों की तरह मुल्क भर में फैली एनजीओ के कारनामों से कौन वाकिफ नहीं है? पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कौन सा मौका है जिसको ये हाथ से जाने देते हों? बदचलन और बेराह रो औरतों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क ले जाकर पाकिस्तान की जग हसाई कौन करवाता है? बरतानिया और अमरीका में किसके बच्चों के खर्चे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां बर्दाश्त करती हैं? यही इस्लाम बेजार कुव्वतें हैं जिन्होंने भारतीय शराब के बदले पाकिस्तान के सारे दरियाओं को खुश्क कर डाला। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसा मौका भी आया जब कभी मुल्क को कुर्बानियों की जरूरत पड़ी हो और इन एनजीओज या इस्लाम बेजारों ने वतन के लिए कोई कुर्बानी दी हो? पाकिस्तान को दो लख करने वाले इस्लाम पसंद नहीं, बल्कि यही इस्लाम बेजार कुव्वतें थी जिसकी वजह से पूरी कुव्वत को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर जब रूस अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो रूसी भेड़ियों को पाकिस्तान के दस्तरखान पर टूट पड़ने की दावत देने वाले पिशावर और कोयटा में सुर्ख झंडे हाथों में लिए रूसी फौजों के इस्तकबाल के लिए बेचैन इस्लाम पसंद नहीं, बल्कि यही इस्लाम बेजार तबका था। और अब अमरीकियों और भारतीय हिंदुओं के लिए जासूसी करने वाले इस्लाम पसंद नहीं, बल्कि वो हैं जो आए दिन दिल्ली के बाजारों की रंगीनियां देखने के लिए मरे जाते हैं। हालांकि दूसरी जानिब इस्लाम पसंदों का आलम यह है कि उन्होंने इस चमन की सैराबी के लिए हमेशा अपना खून जिगर पेश किया। रूस के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग जो अफगानिस्तान के कोहसारों में लड़ी गई, दरहकीकत पाकिस्तान के दिफा की जंग थी। कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के सामने डटे रहने वाले और अपना खून देकर पाकिस्तान की शहरत की हिफाजत करने वाले इस्लाम पसंद ही हैं। जबकि इस्लाम बेजारों का ये आलम है कि उनका बस नहीं चलता कि कश्मीर क्या पूरा पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा बनवा दें, फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है। सच बात कहें तो पाकिस्तान में उनका कुछ भी नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर ये तबका भारत को अपना कहे तो बात किसी कदर समझ में आती है, क्योंकि भारतीय आकाओं के लिए उनकी खिदमात इतनी जरूरी हैं कि बुरे वक्त में दिल्ली में उनको जाए पनाह मिल जाए। ये बात याद रखनी चाहिए कि कई मुस्लिम ममालिक को सेकुलर बनाने के तजुर्बे किए जा चुके हैं और हर एक जानता है कि बिल्कुल नाकाम रहे। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस्लाम के अलावा कोई और नजरिया इस कौम को मुत्तहिद नहीं रख सकता। इस्लाम ही वो वाहिद नजरिया है जो बुरे से बुरे वक्त में भी अहले पाकिस्तान को हौसले और जज्बे अता करता है। चुनाचा यहूदियों की ईजाद करदा इस्तलाहात की आड़ लेकर शायरे इस्लाम के खिलाफ जबान दराजी से बाज रहा जाए और इस्लाम बेजार और पाकिस्तान दुश्मन कुवतों के कहने में आकर दीनी कुवतों और उलमाए कराम के खिलाफ किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जिसका फायदा इस्लाम दुश्मन कुवतें उठा ले जाएं। दुनिया के बदलते हालात को समझने की जरूरत है। इस्लामी शानो शौकत का सूरज तुलू हो चुका है, लिहाजा अमरीकी और भारतीय चमगादड़ों के सूरज को बुरा भला कहने से उसको गहन नहीं लगेगा। दज्जाली कुव्वतें मुजाहिदीन की दुश्मन क्यों? आखिर उनका कसूर क्या है? ना उनके पास बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत है, ना उनके पास जदीद तालीम है, ना टेक्नोलॉजी, ना एटम बम। आखिर क्या वजह है कि पहाड़ों में भी दज्जाल और उसके इत्तेहादियों को बर्दाश्त नहीं? तमाम दज्जाली कुव्वतें उनके खिलाफ मुत्तहिद हैं और अपनी माओ के जने मरवाने के लिए सरजमीन अफगानिस्तान पर आ गए हैं। ताबूत भर भर के उनके मुल्कों को वापस जा रहे हैं। असल दुश्मनी क्या है? इबलीस की सबसे बड़ी दुश्मनी खलीफा आजम मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इबलीस की उस वक्त मुकम्मल कोशिश ये है कि दज्जाल और उसकी कुव्वतें हर हाल में ये मार्का जीत जाएं ताकि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह की नजरों में नाकाम दिखा सके। ये मार्का खैर शर जारी है और इबलीस शर की कुव्वतों के जरिए दुनिया से खैर का मुकम्मल खात्मा कराना चाहता है। इबलीस और उसके आलाकार और यहूदियों की जंग मुकम्मल तकदीर इलाही के खिलाफ तकबर और हठ धर्मी पर मबनी है। लिहाजा उसका ख्याल है कि वो इस जंग को जीतने के लिए आखिर में अपनी सबसे बड़ी कुव्वत दज्जाल को लेकर आएगा, लेकिन जो तमाम दुनिया से खैर की कुव्वतों का खात्मा करके इबलीस का निजाम कायम करेगा। इस मार्के में अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमा रहे हैं कि इसके वादों पर कौन यकीन रखता है और कौन इसके वादों को भूलकर इबलीस के धोखे में आता है। इस इम्तिहान के बारे में कुरान करीम ने एक जगह नहीं कई जगह फरमाया, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यालमिल्लाहिल्लजीना जाहदू मिनकुम वयालमुस साबिरीन। तर्जुमा, क्या तुमने ये समझ लिया कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे हालांकि अल्लाह ने भी ये जाहिर भी नहीं किया कि तुम में जिहाद करने वाले कौन हैं और जम जाने वाले कौन हैं। दूसरी जगह फरमाया, अलम अहसिबा अहसिबन्नासा अन यतरुकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाह अल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्ना अल्काज़िबीन। तर्जुमा, अलिफ लाम मीम, क्या लोग ये समझ बैठे कि उनको सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि वो ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनसे पहले वालों का भी इम्तहान ले चुके हैं। लिहाजा अल्लाह हर हाल में उनको जाहिर करेगा जो सच्चे हैं और हर हाल में उनको भी जाहिर करेगा जो झूठे हैं। वाज़ह रहे कि ये बात अल्लाह उन लोगों के बारे में फरमाता है जो खुद को मुसलमान कहते हैं कि ये इम्तहान हर हाल में देना होगा ताकि सच्चों और झूठों, मोमिन और मुनाफिक का पता लग जाए। जैसा कि हदीस में है कि ये इम्तहान कलमे की सच्चाई का होगा कि कलमा पढ़ने वालों ने इसको कितना निभाया। अब हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि ये जंग असल किस चीज के लिए है। ये जंग है इस बात की कि शैतान और उसके हलीफ दुनिया से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटाना चाहते हैं, जबकि उनके खिलाफ बरसरे पैकार मुजाहिदीन उनके अजाइम को नाकाम बनाकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कट मरना चाहते हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर जिस्मों की बोटियां करा रहे हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सब कुछ लुटाने का आज़्म कर चुके हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर माँ बाप की मोहब्बत को परवान चढ़ा चुके हैं, नबी के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करने वालों, ये है वो जुर्म जिसका इर्तकाब करने के बाद अब फखर से और सीना तान कर तमाम शैतानी क़ुव्वतों के सामने उसका इकरार भी कर रहे हैं। ये है वो जुर्म जिसकी वजह से गैर तो गैर अपने भी गैरों के साथ जा खड़े हुए हैं। ये है उनका गुनाह, वो गुनाह के दुनिया का चप्पा चप्पा उनके लिए आग का दरिया बना दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन ताकतें किसी हाल में भी उनको ये इजाज़त देने के लिए तैयार नजर नहीं आती कि वो अपने आका की खातिर इस रास्ते को इख्तियार करें। जहरीली गैसें इन पर छोड़ी जा रही हैं, कहीं आग की बारिश की जा रही है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने हैं कि फिर भी इस रास्ते को छोड़ने पर राजी नहीं है। क्यूबा के पिंजरे उनकी आतिश शौक को ठंडा ना कर सके, शबरगान के दरिंदों की दरिंदगी उनकी हिम्मतों को पस्त ना कर सकी। उनकी मिसाल तो ऐसी है बकौल शायर, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ऐसे डूबे हुए हैं कि ये मर्ज लम्हा लम्हा पल पल और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मार्का खिलाफत आखिरी मराहिल में दाखिल हुआ चाहता है। इब्लीस अपनी तमाम कुव्वतें उनके खिलाफ जमा कर चुका है, लेकिन अल्लाह ने इब्लीस से कहा था कि अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि तू मेरे नेक बंदों के होते हुए कभी अपनी ख्वाहिश और मिशन में कामयाब नहीं हो सकता। जब तक ये जमीन पर रहेंगे, बेशक बहुत थोड़े होंगे, लेकिन ये थोड़े ही तेरी तमाम कुव्वतों के लिए काफी होंगे। मैं अपने और अपने हबीब के मिशन के लिए लड़ने वालों के इतने दर्जात बुलंद करूंगा कि मुझ पर सच्चा यकीन रखने वाले दौड़ दौड़ कर इनको हासिल करना चाहेंगे। ये ना तो इबलीस की कुव्वतों से डरेंगे और ना माल और दौलत का लालच उनको इस रास्ते से रोक सकेगा। दुनिया की मोहब्बत उनके पाँव की जंजीर नहीं बनेगी, मौत का खौफ उनके कदम नहीं डगमगा सकता, बल्कि मौत का शौक उनको ऐसा दीवाना बना देगा कि बड़े बड़े तालीम याफ्ता उनको पागल कहेंगे। ये मौत को पाने के लिए मौत के पीछे भागेंगे और मौत उनसे भागेगी। इश्क से खाली दिल और नूर से खाली अक्ल इश्क व वफा के इस अंदाज को नहीं समझ सकेगी। बकौल शायर, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। लिहाजा अगर आतिशे नमरूद के शोले भड़क रहे हैं तो इश्क इब्राहिमी भी मौजे मार रहा है। जहां जहां आग है वहीं परवाने भी हैं। कश्मीर और फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान, चेचनिया और अलजजायर, और अब शायद नमरूद वक्त अपने आतिशकदे को पाकिस्तान में भड़काना चाहता है। तो जरूर भड़काए कि यहाँ इश्क के चश्मे फूटते हैं, परवाने भी दर बदर फिरते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उनके दीन के लिए जिस्मो जान देकर हमें भी दावत दे रहे हैं इसी लश्कर में शामिल हो जाने की। अल्लाह वाले अल्लाह के लश्कर की तरफ बुला रहे हैं, दज्जाल वाले दज्जाल के लश्कर की तरफ। सिवाय मक्की और मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, फैसले का वक्त आ पहुंचा। दज्जाल से पहले जिसने जिस रास्ते का इंतखाब कर लिया, दज्जाल के वक्त वो इसी पर जमा रहेगा। जो उसके आने से पहले इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो गया, दज्जाल इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको अपनी अमान में ले लें और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और उनके जरिए तमाम उम्मत को काफिरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा दें और हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा लें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दहल किताब فلم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ کتاب یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے. امید ہے آپ کی دینی معلومات میں ایمان افروز اضافہ ہوا ہوگا.